हवेली के गेट से अंदर कदम रखते ही अदिति को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। बाहर की सड़कों का शोर, कार की आवाज़ें सब पीछे छूट चुका था। यहाँ सिर्फ पीली रोशनी थी, ऊंची दीवारें थीं और एक अजीब सी खामोशी जो आम दिनों में सुकून देती थी लेकिन आज उसे भारी लग रही थी। वो अभी ठीक से अंदर बढ़ी भी नहीं थी कि सामने ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। आर्यन की आवाज़ और श्यामली की। अदिति वहीं रुक गई जैसे किसी ने उसके पैरों को ज़मीन से बांध दिया हो। ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी थी, आर्यन सामने खड़ा था, जैकेट अब भी उसके हाथ में थी और श्यामली सोफे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी, वो राहत जो लंबे डर के बाद आती है। थैंक्स आर्यन, श्यामली कह रही थी, उसकी आवाज़ में सच्ची कृतज्ञता थी। तुम पार्टी छोड़कर मेरे एक बार कहने पर विश्वनाथ जी को देखने ऑफिस चले गए और उन्हें साथ भी ले आए। अदिति की सांस अटक गई। तो यही वजह थी, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम जानती हो, उसने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात को किसी हाल में मना नहीं कर सकता। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी झिझक के। वैसे, आर्यन ने आगे कहा, पापा बस काम में बिजी थे, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तुम तो जानती हो पापा ऐसे ही हैं, काम में सब कुछ भूल जाते हैं। श्यामली ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन आज मुझे सच में बहुत डर लग गया था। आर्यन ने बिना सोचे उसके हाथ पकड़ लिए जैसे ये उसका स्वाभाविक हक हो। उसकी उंगलियां श्यामली की उंगलियों के चारों ओर बंद हो गईं, सुरक्षात्मक अपनापन लिए हुए। अब सब ठीक है, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं हूं ना। उस पल आर्यन की आंखों में जो था वो छुपा नहीं था, चिंता और प्यार। दूर खड़ी अदिति ने सब देख लिया, एक एक पल, एक एक हरकत। उसका सीना जलने लगा। ये वो जलन नहीं थी जो सिर्फ गुस्से से आती है, ये वो थी जो दिल के किसी बहुत गहरे कोने को छू जाती है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने उसका ही हक बड़ी सहजता से किसी और को सौंप दिया हो। श्यामली ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, वो थोड़ा असहज हो गई थी। आर्यन, उसने हल्के से कहा और अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब सब ठीक है, तुम थक गए होगे। आर्यन ने हाथ छोड़ दिए लेकिन उसकी नज़र अब भी उसी पर टिकी थी। अगर तुमने कॉल नहीं किया होता, उसने कहा, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी हालत क्या है। श्यामली ने हल्की मुस्कान दी, इसलिए तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अदिति अब और नहीं देख पाई। उसने महसूस किया कि अगर वो एक पल और वहीं रुकी तो शायद कुछ ऐसा कह बैठेगी जो वो खुद भी वापस नहीं ले पाएगी। उसका गला सूख रहा था, आंखों के कोने जल रहे थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी, कम से कम यहां नहीं। वो चुपचाप मुड़ी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। उसके कदम तेज थे लेकिन दिल भारी। पीछे विशाल खड़ा था, उसने भी सब देखा था। आर्यन की आंखों में वो अपनापन, श्यामली की राहत और दूर खड़ी अदिति का सिमटता हुआ चेहरा। विशाल समझ गया था ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, ये वो जगह थी जहां बातें नहीं एहसास टकराते हैं। वो आगे बढ़ा और ड्राइंग रूम में पहुंचा। ओ, श्यामली ने विशाल को देखते ही कहा, तुम लोग आ गए? आर्यन ने भी नजर उठाई। हाँ, उसने कहा, अभी पहुंचे। विशाल ने एक पल आर्यन को देखा, कुछ कहने का मन था, बहुत कुछ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुछ बातें उस वक्त नहीं कही जाती जब सामने दिल खुले हों और पीछे दिल टूट रहे हों। श्यामली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब चलती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ। उसने दोनों की ओर देखा। गुड नाइट आर्यन, गुड नाइट विशाल। गुड नाइट, विशाल ने कहा। आर्यन ने भी सिर हिलाया। गुड नाइट श्यामली। श्यामली मुड़ी और अपने कमरे की ओर चली गई। उसके कदम हल्के थे जैसे आज का बोझ थोड़ा कम हो गया हो। सीढ़ियों पर उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। ड्राइंग रूम में अब सिर्फ आर्यन और विशाल रह गए। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। आर्यन ने जैकेट सोफे पर रखी और गहरी सांस ली। आज की रात अजीब थी, उसने कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। विशाल ने उसे देखा। तुम जानती हो, उसने सावधानी से कहा, अदिति ने सब देखा। आर्यन चौंका। देखा क्या? सब, विशाल ने कहा, तुम्हें, श्यामली को और तुम्हारी आंखों को भी। आर्यन की भौहें से कुड़ गई। उसे जैसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या किया है या क्या नहीं किया। वो समझेगी, उसने कहा, लेकिन उसके स्वर में यकीन कम था। विशाल ने कुछ नहीं कहा, बस सीढ़ियों की ओर देखा जहां से कुछ देर पहले अदिति ऊपर गई थी। ऊपर अपने कमरे में अदिति ने दरवाजा बंद किया और पीठ टिकाकर वहीं खड़ी रह गई। कमरे की शांति अब उसे काटने लगी थी। उसने आंखें बंद की लेकिन वही दृश्य सामने आ गया, आर्यन का श्यामली का हाथ पकड़ना, उसकी आंखों में वो चिंता, अपनापन। बस काम की वजह से गया था, उसने खुद से कहा, बस एक दोस्त की मदद, लेकिन दिल ने यह तर्क मानने से इनकार कर दिया। उसने बेड पर बैठते हुए गहरी सांस ली। अगर मैं वहां होती, उसने सोचा,
तो क्या वो ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ता? उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। नीचे हवेली फिर से शांत हो चुकी थी, रात गहरी हो रही थी, लेकिन इस खामोशी में तीन दिल जाग रहे थे, हर एक अपने अपने सवालों के साथ। और कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका था, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा फैल गया था। बाहर बरामदे में जलती पीली लाइट भी अब मत्थन लग रही थी। आर्यन सोफे के पास खड़ा था, हाथ में मोबाइल घुमाते हुए, जैसे मन कहीं और अटका हो। विशाल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आ गया। आर्यन भाई, विशाल ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। आर्यन ने उसकी ओर देखा। कहो। विशाल ने गहरी सांस ली। शामली को भूलना ही तुम्हारे लिए सही होगा। आर्यन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुम ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि आज जो हुआ, विशाल ने सीधे कहा, वो अदिति ने देखा है और तुम्हें पता है वो इस वक्त कितनी नाराज है। उसने थोड़ा रुक कर कहा, तुम पार्टी छोड़कर बिना बताए चले गए और यहां आकर शामली का हाथ पकड़ लिया, किसी को भी बुरा लगता। आर्यन ने नजर झुका ली, उसकी उंगलियां फोन पर रुक गईं। मैंने कुछ गलत इरादे फू नहीं किया था, उसने धीमे से कहा, वो परेशान थी बस इसलिए। मैं जानता हूं, विशाल ने बात काटे बिना कहा, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा इरादा क्या था, सवाल ये है कि अदिति ने क्या देखा और क्या महसूस किया। आर्यन चुप रहा, कुछ सेकंड बाद बोला, शामली मेरी जिम्मेदारी रही है। थी, विशाल ने जोर देकर कहा, अब अदिति तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी पत्नी। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस सच्चाई थी। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो दो नावों में पैर रखकर खड़ा है और दोनों ही हिल रही हैं। अगर तुमने साफ लाइन नहीं खींची, विशाल ने धीरे से कहा, तो नुकसान सिर्फ अदिति का नहीं होगा, तुम्हारा भी होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो आने वाले फैसलों से पहले हमेशा आता है।